कैसा होता है,
शून्य रहने से कैसा रहता है, वो सब समझता है। कहां तक भरा है, कहां तक खाली है, सब देख करके वो
कोई ठेला उठाया और साध कर ऐसे जगह में मारा जैसे उसमें छेद होकर के टपक। यदि ठेला पास में नहीं रहा, रखिया लिया ठुक उसमें छेद कर दिया, छेद का भी माप उसके साथ साथ आए। दूध के लिए अधिक छेद करने की जरूरत नहीं। मक्खन जरा गाढ़ा होता है और सूखा हुआ
थोड़ा
उसके लिए बड़ा छिप चाहिए। ताजा मक्खन के लिए उतना जरूरत नहीं है। ठीक माप के अनुसार में वो सब ठीक चुस्त है, चला चतुर है, ठीक वैसा ही छेद कर देता है। इस तरह से वो यदि अच्छी बात कर मैं प्रदीप मत रखो, पतिया जैसे प्रदीप तो हमने जलाया, वो फूकू करके सबको बुझा दिया, खुद अंधकार कर लेता है और अपने अंग की नील कांति से ही उद्भासित कर देता है, सभी हरा सा दिखता है और उसमें प्रवेश कर जाता है, वो देखता है। इस तरह से सब उपाय करके उन लोगों ने देख लिया, वो मानता ही नहीं। पंद्रह को किस लिए देता है, उसको क्या सहो पंत्रों का मैं ऋणी, जन्म जन्म का ऋणी, एक जन्म का ऋणी। मैं गयापन में अपने छोटे भैया और सीता के साथ में सीता का हरण कर लिया गया। मैं बीप ला रहा, मेरे साथ में न सैन्य न रुपया न पैसा न लोकबल न अकबल न कुछ। उस समय एक बंदर आगे आया, सुग्रीव हनुमान नामक बंदर ने उसके मिताली करा दी और उस समय में गंभीर दुख में उन लोग वो एक केवल हमारा सहारा बने और उन लोगों ने सारी सेनाएं हमको अर्पित कर दी। उन्हीं लोगों ने पता लगाया सीता जी और हमारे साथ में वही केवल लड़ने के लिए गए। भोजन यदि मांगते और वेतन मांगते तब तो हो चुका था, वेतन तब देना दूर रहा। मैंने भोजन के लिए भी कुछ कहां से करता, वो बेचारे पेड़ के पत्ते फल मूल कंद उपवास कर करके लंका गए और वहां पर भी अपने लिए हम उसे खाने के लिए नहीं मांगा, सोने के लिए स्थान नहीं मांगा, तंबू और डेरा नहीं मांगा और कितना कष्ट करके हमारे लिए प्राण अर्पित कर दिए। कितने बंदर मर भी गए, वो तो सुसैन बद्य आया, उसके जो सदियों से सब बंदर जीवित हो गए। इंद्र ने वर्षा कर दी अमृत की, भालू कपी जिए किंतु असुर लोग नहीं जिए। क्या है वो चौपाई याद है, तो सोए के सोए रह गए। इस तरह से मैं उनका ऋणी और जाने के समय विदाई के समय में भी मैंने उनको कुछ नहीं दिया, केवल किसी किसी को अंक भर लिए और कह दिया जाए मैं तुम्हारा ऋणी। अब इस जन्म में इन बंदरों को खिला करके अपना ऋण हल्का कर। पिछले हिंदुओं में आज तक काग और बंदर को कभी नहीं मारते थे, इसको आजकल बंदर और काग को भी मारते, बिलारी को भी नहीं लोग मारते थे। जिन जिन जिनसे भगवान का संबंध है उनको हिंदू जाति नहीं मारती थी, तो अब तो ठीक सब विपरीत है। उनकी तो बात करो, जो भक्त लोग हैं जो भगवान का सर्वस्व छोड़ करके भजन करते हैं, जैसे रावण के राज्य में असुर लोग उनको खा जाते थे, ऐसे ही फिर स्थिति होने जा रही है आज या हो रही है। तो राम ये कृष्णचंद्र जी किसी की विदा कर टोटियां सुना रहे, बड़े रोष से सुनाती है कभी कभी। तुम्हारा लड़का भी इसी बचपन की स्थिति में जब इतना भयंकर है, किसी की बात नहीं सुनता, घर जला देने के लिए कहता है, बच्चों को चिमटी काटता है, और ये बड़ा जुआ होगा जब उसके शरीर में बल संचार होगा तो न जाने क्या करेगा। अभी तो दो तीन वर्ष में अभी गोकुल की लीला चल रही है, अभी तक की एक लीला नहीं आई है
वृंदावन
गोकुल में, साढ़े तीन वर्ष या तीन वर्ष तक,
साढ़े तीन
अभी साढ़े तीन वर्ष में समस्त प्रज को उठा दिया है, एक साथ में पचासों साठों हजारों लड़के यदि पहुंच जाए तो एक आदमी क्या करेगा। इस तरह से भयानक उत्पात आरंभ हो गया, किंतु सभी चाहती हैं। यशोदा जी किसी को कुछ उपदेश देती हैं, अरे छिपा करके रखो, किसी को कहते हैं घर में शिकल दे दो, उनका तो वहीं तक रख जाता है, कुछ कार करके कभी करती है, कभी कहती है अरे एक छोटे से बच्चे को थोड़ी सी मक्खन नहीं दे सकती, मक्खन के लिए इतना सिर उठा रखा है और बच्चों को गाली गलौज कर रही है, अरे मेरा बेटा तो तेरा ही बेटा है, बेचारी चली जाती। यशोदान जी ने सबको सोचा इसकी जड़ कहां है, उत्पात जड़ ये है हमारे घर में जो मक्खन है वो कुछ खट्टा होता है, खट्टा मक्खन दही खट्टी होती है, दूध एक ही साथ में चार स्त्रियां बैठाए हैं, चारों का टेस्ट एक होगा, एक ही दूध लेकिन दस मनाया एक जगह दूध, और उसको दस स्त्रियों ने दस जगह उसको दही बनाने का उपक्रम किया, तो सबके दही में एक समान टेस्ट हो जाएगा, तो क्यों बनाने के ऊपर में लिखा एक समान नहीं, बस सब्जी दस ब्रह्मचारियों ने बनाया एक ही समान टेस्ट होगा। अच्छा लगेगा किसी को, कोई अच्छा लगेगा, वो जरूर बदल जाएगा, नमक का टेस्ट या किसी चीज का टेस्ट बदल जाएगा। किसी किसी के हाथों में इतना शुद्ध रहता है और बारीकी होती है, कोई भी चीज बनाए उसमें टेस्ट आ जाए, दही में भी ऐसा है। वो आग की उष्णता और आग की कम उष्णता और समय पर उतारना, समय पर जाम देना, खट्टी चीज कोई चीज देना, क्या कहते हैं
जामुन,
जामुन जामुन देना, जाम से जामुन ये देना ठीक से, समय के अनुसार में सब काम हो तो मीठा से मीठा हो जाएगा, जैसा चाहे। आज समय पर यदि कोई नहीं दिया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जरा गर्म खूब अधिक था उसी में दे दिया तो क्या हो जाता है,
पानी
छूट जाएगा, अलग हो जाएगा, पानी से लबालब फल जाएगा। ये सब तरीके होते हैं। उन्होंने सोचा मैं तो इन दोनों बच्चों को लेकर के सब समय व्यस्त रहती हूँ, एक मिनट का फुर्सत नहीं, नदी मंथन कर रही हूँ, पास में बच्चा बैठा है, उनका चित्त कहाँ है, अच्छा लड़का उठ करके कृष्ण और बलराम दोनों दरवाजे की तरफ में भागे, तो यशोदा जी क्या किया, मंथन कर दिया और वो भी भागे, वो ब्रह्मांड घाट की तरफ में गए, उनको पुकारते हुए ब्रह्मांड घाट में जा रही है। एक दिन तो कुछ डांट दिया यशोदा जी ने, डांट दिया तो कृष्ण का मन कुछ रुआसा हो गया, तो रुआसे में वहां से बच्चों के साथ में चला गया और कागज की नौका बनाकर जमुना जल में छोड़ दिए, खेल रहे। वो नौका कागज की थुली में चली गई थी सर, और इतने में कृष्ण उसको पकड़ते पकड़ नहीं जाए और इतना, और यशोदा जी ने देखा मैंने इसको कुछ बका इसलिए ये पानी में फंसने के लिए जा रहा है। अरे बेटा तू चलिया चला, अब मैं तुझे कहीं भी कुछ भी कहेगा करेगा तो अपने शंकित हो जाती है, ऐसा कभी कभी होता है। इस तरह से चौबीसों घंटा उनका चित्त उसी में लगा हुआ है। छोटा जो गदी तुम्हें मंथन नहीं करती, ये दासियों के द्वारा करवाती, दासियां दूध ला करके ले आती। अच्छा दूध लाया गया दो करके, आग जल गई, उसको भट्टी पर गर्म कर दिया और किसी ने किया कंडे की आग पर, दही किसकी अच्छी बनेगी? कंडे पर बनेगी, अच्छी वो नहीं बनेगी, उसमें टेस्ट भी नहीं होगा, उसमें गुण भी नहीं आएगा। क्योंकि तो ये सब ऐसे तैसे कर देती है, समय का ज्ञान नहीं, वस्तु का ज्ञान नहीं, ऐसे कर देती है। इसलिए खूब मैं गति जमाऊंगी, गाय में दूध दूंगी जमाऊंगी भी और मक्खन भी मैं ही निकालूंगी, अब देखेंगे कैसा मीठा नहीं होता है और कृष्ण नहीं खाता है। इसलिए दीपावली का दिन और सबको उस दिन दीपावली के घर से भेज दिया, सब अपने घर में जाओ। रोहिणी और बलदेव को उपानंद जी अपने घर में ले गए, रोहिणी जी कुछ उपानंद के घर से कुछ व्यस्त होंगी, किसी काम में अस्वस्थ होंगी, कुछ होगा इनको ले गए। अब घर में कोई नहीं रहा, सवेरा हुआ दूध अपने आप निकाला या शाम को निकाला और निकाल करके अपने चूल्ही पर उन्होंने खुद रखा। सवेरा हुआ खुद दधि मंथन में जुट गई और दधि मंथन करने श्रीमद् भागवत में उनका बड़ा ही सौंदर्य वर्णन किया गया। श्यामल शरीर कृष्ण जैसा, कोई कोई कहता है गोरी, किंतु यशोदा जी तो रूप गोस्वामी ने कृष्ण जैसा, कृष्ण का जैसा रूप इनका भी रूप वैसा ही श्यामल वर्ण था। परम सुंदरी प्रौढ़ अवस्था होने पर भी कमर पतली, पत्थर चौड़ा, बेनी गुथी हुई, सूक्ष्म रेशमी वस्त्र पहने हुई है और सभी मंथन कर रही है। सभी का भांड है, एक खंभा है, खंभा में रस्सी लगा दिया और उसको लपेट दिया मंथानी में और इस तरह से मंथन कर रही है। पसीने के बूंदे भाल से मोती की तरफ टप टप करके चपक रही है। सवेरा ब्रह्म मुहूर्त है, गान में मस्त है, नदी का भांड से मृदंग का पिछला भाग आ रहा है और करताल चूड़ियां बज रही हैं, सोने की चूड़ियां बज रही हैं और बड़े मंद और बड़े सुंदर स्वर से, मधुर स्वर से गोविंद राम वर्मा जी या कोई कृष्ण का बाल चित्र गा रही है, तन्मय हो गई है। कृष्ण परम पर सुरेंगे नींद खुली, आंखों में खुमारी, शरीर अभी आलस्य, मैया को आंख बंद करके ही खोजा, पलंग पर मिली नहीं, मैया कहां गई? ऊं किया मैया सुनी नहीं, फिर पलंग से पेट के बल में किसी प्रकार से उतरे और लुढ़कते हुए गिरते पड़ते हुए जोर से मैया मैया और जोर से करते हुए मैया की जब तक कर निकट नहीं पहुंच गए जो सुधा मैया ने सुना लिया। यशोदा जी को जब कभी नहीं सुनाई पड़ा तो एक हाथ से मनखानी को पकड़ लिया और दूसरा हाथ उनकी बेनी पकड़ ली। जब उनमें बाधा आई दधि मंथन में देखिए कौन ने ऐसा किया तो समझ गए, पीछे मुख खोल करके देखा कृष्ण को आगे पकड़ लाया, दधि मंथन बंद हो गई और गुदी में रख दिया, नीचे आंसू के बूंदे टपकने लगी, चुंबन किया, तन से दूध झरने लगा अपने आप और रख करके दीप पिलाने लगी, द्रवित उनका हृदय हो गया, रोमांच और पुलक भी हो गया, अष्ट सात्विक भाव पिलाने लगी, दूध दूध में रखा हुआ दूध उफन रहा था, मानो ये कह रहा है यशोदा जी के स्तन में विश्व ब्रह्मांड का दूध है और कृष्ण का उदर है
ब्रह्मांड
जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड समा सकते हैं, यदि भरने का उपक्रम किया जाए कृष्ण का उदर तो विश्व ब्रह्मांड में जितने समुद्र हैं उनका पानी या दूध फिर समुद्र का पानी भरने पर भी वो पूरा नहीं, इतना उनका चौड़ा और लंबा उनका उदर है जिसमें उनको सुधा जी ने देखा था और दूध भी कम होने वाला नहीं। तो कैसे हो तो तक कृष्ण हमको अपनी सेवा में कभी नहीं लगाए, कृष्ण की सेवा के लिए लोगों की कमी है, है? तो हमको सेवा में लगाएंगे कभी जिनको कुछ आता नहीं है ऐसे लगाए हैं। जैसे आजकल वोटर का वो बनने के लिए लाइन लगी हुई है दिल्ली और कहां कहां सब ऑफिसों में कि हम इसके चुनाव में हम खड़े होंगे साधारण व्यक्ति ऐसे लाइन लग जाए कृष्ण की सेवा के लिए और हम अपनी योग्यता देखें कि हमारी कितनी योग्यता है, कोटि कोटि जन्मों में भी हमको कृष्ण की सेवा में लगने का कभी भी पात्रता आएगी योग्यता आएगी नहीं आती। यदि कृष्ण का कोई भक्त तो ऐसा हो और योग्य बना ले तब कभी संभव पर हो सकता अन्यथा नहीं। हमारे अंदर में कोई भी ऐसी योग्यता काम क्रोध लोभ मद मोह मान सत्य अहंकार की गंदी चीजें भरी हुई हैं कोई भी योग्यता साधक जितना ही छोटा रहता है उतना तो समझता कि अब मैंने मैदान मार दिया अब भक्ति हो गई, कितना त्याग करके आया हूं, किंतु जब ऊपर उठता है तब देखता है कि इसका कोई मूल्य ही नहीं है, अभी कहां कृष्ण भक्त है, अपना दोष मालूम पड़ता है। जब अपना दोष कुछ दिखने लगे और दूसरों का दोष न दिखे तो समझो जो अब कुछ आता है, अन्यथा जब तक दूसरों का दोष दिखाई देता रहेगा तब तक तो कोई आता ही नहीं। दूध देख रहा है जो सुधा के स्तन में इतना दूध है और कृष्ण की भूख भी इतनी लंबी चौड़ी है कि कभी दूध भी समाप्त नहीं होगा इनकी भूख भी समाप्त नहीं होगी, चिरकाल के लिए वही पीते रह जाएंगे, इसलिए अब प्राण रखने की कोई जरूरत नहीं, अब आग में जल मरना ही अच्छा। यदि यह शरीर किसी भगवान के काम में भक्तों के काम में न लगे तो शरीर रखने की जरूरत क्या है, यदि भजन ही नहीं हुआ तो क्या जरूरत है। शुद्ध भक्तों का ऐसा ही भाव होता है,
प्राण किस लिए है, मर क्यों नहीं गया? गोपियां इतनी सेवा करती हुई भी को वा कदन भारम, को ये शरीर मट्टी है, इसका भार हम क्यों वहन कर रहे हैं बेकार की, यदि कृष्ण की सेवा नहीं। इसी तरह से वो दुख समझ रहा है, यशोदा रूपी भक्त आ रही है, नहीं नहीं हम कल पिलाएंगे पीछे पिलाएंगे, पहले तुम्हारी सेवा करा लेंगे। इसलिए जो प्रौढ़ और भक्त रहते हैं परिकर, परिकर लोग उन नव शिक्षुओं को आगे बढ़ा देते हैं, नए जो शिक्षक हुए हैं या जो अभी जैसे मठ में भी पुराने जो भक्त होते हैं नवीनों को आगे बढ़ाने के लिए उनको सुयोग आगे देते, लो भाई तुम सेवा करो, नहीं तो कभी भी उनको जीवन में समय नहीं आए। अच्छे अच्छे कीर्तन करने वाले हैं, यदि वही कीर्तन करें और नए को सुयोग न दे कभी जीवन में सीख सकते हैं? वैष्णव लोग गुरु जगत से अप्रगत हो जाते हैं, किस लिए? किस लिए? उनके प्रकट में जो कल्याण है अप्रकट में भी वही कल्याण है, वो जो समझेंगे वो समझेंगे, सब नहीं समझेंगे। भक्तों को नए नए भक्तों को सुयोग देने के ऐसा था, इसलिए यशोदा जी ने सोचा नहीं तुमको प्राण त्याग में करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं पीछे पिलाऊंगा भी तुमको भी पहले सेवा का सुयोग, तुम मरो मत। इसलिए सात आठ से दौड़ी उफनते हुए दूध को उन्होंने आग से हटाया, पानी के छींटे देकर के उसे शांत किया, संतना के छींटे दिए और लौट करके आने आग। कृष्ण भी अतृप्त थे, हम जोर से पकड़ा उनको किंतु यशोदा जी ने एक झटके में ही उसे बैठा दिया। भक्तों के आगे उनका बस और पल कोई भी काम नहीं करता, उतना त्रिनासुर बकासुर अगासुर हिरण्यकश्यपु रावण इसके लिए तो भयंकर बन जाते हैं, किंतु भक्तों के सामने उनकी तनिक भी नहीं चलती। अपना पूरा बल लगाया और यशोदा जी ने थोड़ा सा डांट कर बैठ और जल्दी से छुड़ा करके बैठ, एक सेकंड नहीं लगा उनको बैठा, किंतु पूतना पीणा वर्ता और वो कौन सा था सकता सुन पिंड नहीं छुड़ा सके और यशोदा जी ने छुड़ा, बैठ गए डांट कर्मन करने लगे, क्रोधित हो गए, वो स्फुरित होने लगे, पत्थर कंपन करने लग गए, आंखें कुछ रोष भरी लाल सी हो गई। जब यशोदा जी चली गई तो साथ ही साथ नटखट पक्ष, अच्छा मैं अच्छी तरह से शिक्षा दी, इसलिए उन्होंने इधर उधर देखा और हरिया को आप सब गिरा देंगे, जो मंथन हो रही थी तभी थोड़ा सा पानी भी दिया था, पूरा पानी नहीं दिया था, कुछ गीला हो गया था, गिराने की चेष्टा किया किंतु वो तस से मस गगरी नहीं हुई, नहीं हिला सके। यहां पर एक चीज देखने की बात है, भक्ति का कुछ विचार, एक है वो जो दो विचार मैं कहता हूं भक्त स्वामी से अन्ना विलासिता के विषय में बताता हूं। अति
व्यक्ति,
हाँ अति व्यक्ति और एक अव्यक्ति, भक्ति कहीं नहीं दिखने पर भी वो भक्ति होती है और अत्यंत अधिक भक्ति का लक्षण प्रकट होने पर भी भक्ति नहीं है, वह व्यक्ति और अति व्यक्ति। कृष्ण को वो अच्छा लगना ही भक्ति है और कृष्ण का अच्छा नहीं लगना भक्ति नहीं, कृष्ण से इंद्रियों को अच्छा लगना बुद्धि भक्ति है और आत्म इंद्रिय पाए बने काम, अपने सुख के लिए यदि भागवत पर पाठ करते हैं, ठाकुर जी का आसन करते हैं, अपने सुख के लिए कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं, अपने सुख के लिए कुछ भी करते हैं, श्रवण कीर्तन समाज बंधन करते हैं, तो ऊपर से भक्ति जैसा देखने पर भी भक्ति नहीं की हो सकता। दूर रहते हैं, भक्ति का कुछ कर नहीं रहा, किंतु भक्ति को भी सकता, इसीलिए यहां पर दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है भगवान की अपेक्षा उनके प्रिय द्रव्यों को पर ऊपर में जो भक्ति होती है वो उससे भी बढ़ करके भक्ति है। कृष्ण को अप्रसन्न करके भी, कृष्ण को ऐसे चांटे लगा करके भी, उनका कान मल करके भी, उनको रुला करके भी, यदि कोई उनकी वस्तुओं की रक्षा करता है तो ये भी भक्ति का लक्षण है। भक्ति ये अधिक, जैसे कृष्ण ने अपना कपड़ा गंदा कर दिया और जसोदा जी ने कहा जब फिर गंदा करेगा उनका कान मल दिया, कोई कह रहे कि कपड़े के लिए और उसको ऐसा कर रही, अभी दूध के लिए, दूध की रक्षा करने के लिए कृष्ण को अतृप्त अवस्था में ही छोड़ करके चली गई और कृष्ण रोने लग गए, उनकी भूख पूरी नहीं हुई, ये कौन सी भक्ति हुई? साधारण दृष्टि से साधारण मनुष्य ऐसा ही विचार करता है, बताइए नहीं। यशोदा की अंतर्भावना क्या है? कृष्ण को धमका करके बैठा गई शासन कर, ये किस लिए? इसलिए कि हमारे दूध से ही इसकी पुष्टि नहीं होगी, किसी का मक्खन बनेगा, दही बनेगा, घोल बनेगा, शक्कर बनेगा, इसी से संदेश बनेगा, लड्डू बनेगा, मोतीचूर बनेगा, लाखों प्रकार की मिठाइयां, लाखों तरह की चीजें ये सब बनेंगे और उसे ये पुष्टिकारक पुष्टि होगी, और ये समझता नहीं है, ये दूधी जब चौपट हो गया तो फिर सेवा करते हैं, इसलिए कृष्ण को आर्थिक अवस्था में पहुंच करके तो कृष्ण को जो प्यारी चीजें हैं उनका जाना है। कोई आदमी है कृष्ण से भी अधिक उनकी बंसी को अधिक प्यार करता है तो कृष्ण को क्या होगा? गोपियां कृष्ण की चोरी नहीं करती, बंसी की चोरी करती है और कृष्ण को कितने तरह से हैरान करती है और कृष्ण उसमें आनंदित हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण के प्रिय वस्तुओं का आदर करना कृष्ण से भी अधिक, ये भी भक्ति का लक्षण है। कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं चारू मुष्टिक से लड़कर, किंतु चारू मुष्टिक का लड़ना ये भक्ति नहीं है, इसमें अतिव्याप्ति है। कृष्ण को प्रसन्नता होती है और यशोदा में अतिव्याप्ति है, इसलिए सब कुछ अंतर्भाव के ऊपर में निर्भर करता है। भक्ति वो आत्मा की वस्तु है, इसलिए यशोदा जी जब दूध को चढ़ाकर उतार करके जब लौटी तो देखा कि कन्हैया तो है नहीं, गया कहां? और दूध का भान जैसा का तैसा खड़ा है और दूध पानी में मिश्रित होकर के पतला होकर के और सब कुछ वो दही निकल गई है। कृष्ण कुछ गलती कर गए, चोर जितना भी सावधान रहे तभी कुछ न कुछ वो रह जाता है अवशिष्ट चिन्ह, जिससे कि पुलिस उसको फिर पीछे से पकड़ लेती है। यशोदा जी हंसने लगी, कहां गया? सभी में उनके पैरों का सुंदर सुंदर छाप पड़ा हुआ, बस समझ गया ये घर में गया है। पहले तो बिगड़ी, फिर पीछे से हंसी और छोटी सी लखिया लेकर के घर में जाकर और देखा कि घर में घुस करके पोखर को जैसे खड़ी थी उसी पर चढ़कर हाथ से मक्खन निकालता है, बंदरों को देता है, कभी अपनी खाता है और सत्संग की नेत्र से कभी हमारे तरफ नहीं, घर में जिस मैया आई कि नहीं देख रहा, भीतर की तरफ दरवाजा, बाहर की तरफ में दरवाजा, उधर का दरवाजा खोल रखा है सदर का रास्ते का और इधर का दरवाजा बंद रखा है जिधर से मैया आएगी, मैया आएगी तो दरवाजा खोलेगी, मैं समझ जाऊंगा और बस भाग जाऊंगा उधर से। चलाकी चतुराई में खूब तेज है मैया, मैया भी तो कम नहीं, झांक कर से पहले देखा, स्थिति सारी समझ गई। जब वो निकालने लगा तो झट घर के भीतर घुस करके तिवार में छिप गई और इस ताल में रही कि जो ही उधर में फिर दही निकाले, फिर मैं जाकर के पीछे से पकड़ लू, जब ही वो फिर हाथ लगाया यशोदा जी थोड़ी सी निकली, इतने में कौवे टप टप कर और बंदर भगे, बंदरों ने देख लिया, बस अनुमान हो गया जी मैया आ गई, पीछे फिर करके देखा और जट खुश करके भगे, उसका भाग करके जाएगा कहां से। आज सभी लोग गोश्त में चले गए हैं, परेश सुना है सुराख पद पद ही तो जाएगा, हमारे पेट से ही निकला है, उसी से बुद्धि तुम्हारी निकली है, ठीक है तुम सबो देखे कहां भगवान आज तुझे छोड़ू, क्योंकि अब यशोदा जी कुछ फूल का है थी और ये अभी 3.5 वर्ष का हो गया है, बस भगा और पीछे से भगी, थोड़ी देर में यशोदा जी कुछ क्लांत हो गई, एक पत्थर का टुकड़ा या कुछ उठाया, मट्टी का ढेला खड़ा रहा, बस ऐसे किया यशोदा, कृष्ण ने ऐसे कर दिया, मैया मार मत बाता बाप मारूंगा नहीं, तुम्हें चोरू मारूंगा नहीं, मैया मुझे मत मार, चोरी क्यों की, मैंने चोरी नहीं, चोर तो तुम्हारे वंश में ही होगा, हमारे वंश में नहीं, अच्छा ये ठीक ठीक हो गया, अच्छा तो तुमने हड़िया को क्यों तोड़ी, तो मैंने तो थोड़ा नहीं, तो तुम्हें दौड़ रही थी, जल्दी में हड़बड़ा करके उठी और पैर का कर लग गया, बस टूट गया, इसमें मेरा दोष क्या है, और भी उनको कुछ रोष हुआ, कुछ हंस भी रही है, फिर पकड़ने के लिए दौड़ी सिर भगा और कुछ क्लांत हो गई, कुछ दूर भी आ गया, केस खुल गए, पुष्प गिरने लगे, मानव पुष्प करेंगे, बेटे को पकड़ो हम भी तुम्हारे साथ में है, अकेले नहीं, इस तरह से रास्ते में फूल गिरते हुए चले जा रहे हैं और कुछ प्राण जो है पसीने के बुन रहे हैं, तो उनको कुछ थोड़ा सा दया आ गई कृष्ण, अच्छा टेक कुछ उठाया मारने के लिए, लड़किया छोड़ी ऐसे जब अभी मार, बस ऐसे किया जब ओके ठीक है मारू आप कृष्ण एकदम है इस और रोने लगे, रुदन तमोर नेत्र भक्ति के साथ यशोदा जी ने मैया ने उनको बांधने का उत्साह दिया, बंध नहीं रहे, भक्तों की चेष्टा एक अंग और भगवान की कृपा ये दूसरी अंग, साधक लाख चेष्टा करे भगवान को पाने के लिए, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक वो बंधन में नहीं आए, उनको कोई दर्शन नहीं कर सकता है, यशोदा जी परिश्रम कर रही है जब तक बंधन में नहीं आए, योग माया ने बांधने नहीं दिया, कमर जैसी की तैसी रस्सी बढ़ती गई, गांव गोकुल की समस्त रस्सियां भी आई उनको बांधने चली, दो अंगों का पकड़ा गया, क्यों अभी भगवान की कृपा नहीं हो रही और दूसरी बात इनका भी परिश्रम पूरा नहीं हुआ, अपने परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं नामात्मा प्रवचन ही न लब्ध हो, प्रवचन से भगवान नहीं मिलेंगे। हजार प्रवचन करके लाखों लोगों को तुम कदकट कर दो कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास में तो अधिक से अधिक 250 आदमी हैं, कहीं कहीं पर 10,000 भी लोग बंगाल में मेदिनीपुर इत्यादि में जीत जाते हैं। यहाँ पर कहाँ गुजरात से और कहाँ कहाँ कैसे आते हैं, एक एक लाख लोगों की भीड़ होती है, बड़ी भीड़ होती है। भगवान मिल जाएंगे जिनकी एकांत की कतन नहीं, केवल बाजा और स्वर, कोई भी एकांतिकता भगवान में नहीं है, बस उसी से मिल जाएंगे प्रवचन करने से। बहुत से सुनने से भी भगवान नहीं मिलेंगे, बुद्धि से नहीं मिलेंगे, विद्या बल सौंदर्य से नहीं, जिसको कृपा पात्र के रूप में उन्होंने वर्ण कर दिया कृपा पात्र, बस वही भगवान को जान सकता है, दूसरे नहीं जान सकते। शरणागत होने पर भी यदि वो उन्होंने ग्रहण नहीं किया तो शरणागति होने से भी कुछ नहीं होगा। ग्रहण किया कि नहीं कृपा पात्र के रूप में, ये बात है। सत्योदा दीपांसी चली गई, नहीं बंधा 2 बजे, 10 बजे तक बंधा नहीं। जब परिश्रम हुआ आपकी पेट के पुण्य योगने लगे, कुछ रुआसा हो गई, नारायण के शरणागत हुई गृह देवता के, मुख विवर्ण हो गया, गोपियां हंसने लगी या लज्जित भी हो गई। जब कृष्ण से देखा नहीं गया तो कृपया सीत तो सौबंध नहीं, कृपा से ही
इष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया।
इसलिए भक्त जब तक ही ऐसी तीव्र उत्कंठा न रहे और भजन का परिश्रम न रहे तब तक कृष्ण की कृपा होगी नहीं, और बिना कृष्ण की कृपा के वो होगा नहीं। इसलिए दोनों का मिलना जरूरी है, अपना परिश्रम और भगवान की कृपा, दोनों का मिलन होना चाहिए। साथ ही साथ में उनकी योग माया वहां से हट गई, बस एक ही बंधन की रस्सी से वो बंध गए। हमारे समुद्रक्षक के रक्षित
नमस्ते धामनी सुरजीत की धाम, सुरजीत की धामने तभी आया विश्वस्त।
कि मैं उस रस्सी को नमस्कार करता हूँ जिस रस्सी के द्वारा कृष्ण बनते, वो रस्सी क्या है, प्रेम है, वो प्रेम रूपी रस्सी से बंधे। अपने बंधन और तमरा करके भी उनको मुक्त कर दिया, जमलाधर को बंधन अब इस लीला का हम लोग कल वर्णन करके और बाकी करने के लिए अपने हृदय रूपी कारागार नित्य ऐसे बांध करके रखूंगा कि कहीं आप निकल रहे
बतला रहे सुने सभी भाईजन लीला को नमस्कार करता हूं, वो लीला हमारी रक्षा करें। लीला कैसे रक्षा करेंगी, भगवान का नाम रक्षा करें, ये समझ में आ जाता है कि भगवान तो लीला कैसे रक्षा करेगी।
नाम
जो लीला जो देख रहे हैं वो भी भगवत को, इसलिए वो लीला हृदय में स्तुति होगी तो कृष्ण भी स्तुति हो जाएंगे, ये भी की तो वो पिता है। उससे ये संसारिक स्थिति दूर हो जाएगी और बॉलिंग है
अच्छा
बॉलर से बल्कि कैसे लीला रक्षा करती है साधारण भाव से देख लो। यदि लीला का स्मरण होगा तो माया आ सकेगी हृदय में, निरंतर नाम होता रहेगा तो अपराध का कोई भय है? इस पर साधारण दृष्टि होगी। यदि लीलाओं का चिंतन निरंतर होता रहे तो अपराध आने का माया घुसने का कोई प्रश्न नहीं, सब समय कृष्ण की स्मृति रहेगी। लीला कथा का श्रवण उन लोगों के लिए सफल है जो सुन करके चिंतन करके स्वप्न में भी उसी का, सोने के समय में उसी का, उठने पर उसी का ध्यान करते चिंतन करते, नाम करना भी उसी का सार्थक है। जब इस स्थिति आ जाए नाम करते करते सोए, नाम करते करते उठे, स्वप्न में भी चलते फिरते बैठते सब समय उसके स्मृति। लीला की भी ऐसी ही, जब ऐसी ध्रुवा में स्मृति होने लग जाएगी तो समझो जिसे आप ठीक है वो लीला हमारी रक्षा है। कृष्ण को यशोदा माँ पा रही, यशोदा जी सोच रही है स्वाभाविक मातृ वत्सल स्वभाव के आधार पर जैसा सोचना चाहिए ठीक वैसा ही सोचना। वो सोच रही है सब कुछ में ये लड़का बिगड़ रहा है और जो लहना देने वाली है वो ठीक कर रहे हैं। आज घर में भी मैंने प्रत्यक्ष यह देखा, जुआवस्था में होने पर ये अत्यंत अधिक बिगड़ गए, इसलिए अभी से इसको शांत कर, इसको जब दंड न देंगे बच्चों को कैसे वशीभूत नहीं किया जाए, या तो दंड देकर शाम दाम दंड दे मधुर वचनों से प्यार से उसे समझाया जाए, इस पर भी नहीं मानता है तो कुछ ले देकर के उसे शांत करो, ये हो गया दान, जो वस्तु चाह रहा है उसे दे दिया जाए, दंड दंड देकर के उसे दुरुस्त कर, और इतने पर भी नहीं मान रहा है तो भेद कैसे होगा, सभी पिताजी को बिखरा दूंगी, तुम्हारे पिताजी से कह दूंगी, भाइयों में सखाओं में भेद लगा दिया, इसके साथ में कोई मत खेलना,
कोई बात ना कर, किसी से बात ना कर सके
इत्यादि सब, तो वो सब करके हाथ टूटी है, दंड बाकी केवल। अच्छा तो इसको दंड देना, इसलिए दंड देने जा रही, दंड में लठिया उठाया मारने के लिए तो रोने लगे, वो तो रुदन पर बहुत मेरी थका पावा, भैया मुझे बात आ, दोनों ने अदान कर, कृष्ण जब अत्यंत अभी को रोने लग गए तो मैंने लठिया छोड़ दिया, हाथ बांध लिए जाए या इसको कमी एक जगह बांध लिया जाए, क्योंकि अब बिगड़ा ही लड़का हो चुका है, कहीं जाकर फिर जमुना में फंस गया, कहीं जंगल में चला गया, कहीं कुछ हो गया, बड़ा सारी गड़बड़ हो गया, इसलिए सर की रस्सी निकाली जुड़ा बांधने का रेशम की डोरी और उसको कमर में बांधेंगे और फिर उसको कोई ऐसे भारी चीज से बांधेंगे जिसे वो जा न सके, तो वही दुखद है, मन में संकल्प कर दिया दुख के साथ इसको बांध जैसे जा न सके,
कृष्ण सोच रहे हैं यदि मैं याद आ दिया वो सवाल इतना गीला तंदूर सोच रहे हैं कहीं यदि मैया ने बांध दिया तो बच्चों के साथ में आज मैं खेल नहीं सकता, खिलवाड़ का बंद हो जाए, सब सखा लोग आ रहे और मुझको इस दयनीय स्थिति में जब देखेंगे तो सभी ताली बजा करके हमारी हंसी उड़ाए कैसा मजा कैसा यदि उन सखाओं का देखना ही इनके लिए बड़ी सारी लज्जा का विषय उसके आने के पहले ही मैया मुझे छोड़ देती और न बांधती पछड़े दूध नहीं पी रहे होंगे मेरे मैं खेलने के लिए अपने बच्चों के साथ में सखाओं के साथ में जाऊंगा घरों की मैयाएं सब खड़ी होंगी अपने घरों घरों में हमारे घर में मक्खन चोरी के लिए आएगा कितनी तरफ की आशाएं बांध रही ये कुछ भी नहीं होगा इसलिए भैया मुझे न बांध योग माया अवगन भगवान प्रति अच्छी शक्ति भगवान को इस बात का पता नहीं चलने दिया भक्त और भगवान दोनों के पास में ये शक्ति है भगवान के परिकरों को भगवान के परिकर लोग किसी भी स्थिति में सहज ही अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं करते नहीं तो लीला नहीं संभव भगवान भी नहीं चाहते किंतु उनकी ऐश्वर्य शक्ति उनके साथ में सेवा कौन उत्तम है गुरु को कामना न करें और उनके मनोयिष्ट सेवा को वो स्वयं कर दे बिना करे जगदीश जी कहां है जगदीश प्रधान है जो प्रभु की इच्छा जानकर और सब जैसा करते का चाहते हैं बल्कि उससे भी 20 सेवा को पूर्ण कर जैसे हनुमान जी प्रभु को कोई आदेश देना नहीं पड़ता है अपने आप समझ लेते हैं उनकी सब इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं ये सेवक उत्तम वैसे ही गुरु जी का जो गुरु जी की इच्छाओं को जानकर और ठीक वैसे ही सब सब इच्छाएं सबके लिए संभव पर नहीं थे सब इच्छा और ऐसा सेवक मुक्त तो है नहीं जो ऐसा कर देगा किंतु साधारण स्थिति में अंतर तो पार्थिव जो आवश्यकता की बातें हैं उसको तो हम जो हमारे अधिकार की बात है उसको तो हम कर सकते हैं जैसे गुरु जी का मुख सूखा है देख करके समझ जाएंगे ना गुरु जी की इधर इधर उधर देख रहे हैं ना जो सच्चा सेवक होगा वो समझ जाएगा किस लिए देख रहे हैं आंखों से वो समझ जाएगा व्यवहार से समझ जाएगा तो एक सेवकों को हम लोगों ने देखा है ऐसे ही सेवक गुरु जी के दिमाग गुरु जी क्या चाहते हैं पहले से ही वो काम रेडी है तैयार किंतु ये तो ही ये शारीरिक आवश्यकताओं की बात कुछ मानसिक है उसको समझ लेना बड़ा भारी कहना चाहिए और उनकी आत्मिक इच्छा को जिसके लिए वो जगत से अवतरण करके इस जगत में आए हैं उसको समझना उसको कौन समझेगा जो उनके साथ में आए हैं वो लोग समझ सकते हैं दूसरे नहीं समझ सकते आ रहा है समझ में वो बड़ा भारी है तीन काम कर रहे हैं बुद्धि की जरूरत शरीर के लिए उनकी आवश्यकता है जिस काम के लिए है उस प्रचार के लिए प्रचार भी दो प्रकार के एक बाहरी और आभ्यांतरिक और एक बाह्य दो प्रकार के प्रचार कार्य होते एक तरह का नहीं होता बाह्य माने
लोक संग्रह के लिए जो कार्य कर रहे हैं, और दूसरा है अंतरंगों के लिए जो काम कर रहे हैं। ये दो प्रकार के उनके कल्याणकारी कार्य। शारीरिक कार्य की महत्ता है, किंतु इससे भी महत्ता की चीज की है आभ्यंतरिक धर्म है आने का जो उसको यदि कोई कर लिया, यदि कोई किया है तो दोनों में से किसने वो प्रसन्न होंगे अधिक, उसके लिए अधिक नहीं होगा। साधक अपने अधिकार के अनुसार में ये सब काम हम लोगों को भी इसी तरह से बिना कहे हुए उनकी इच्छा का परिपूर्ण कर देना, उनके मनोभीष्ट काम को करना, ये उत्तम सेवकों का कार्य है। और रोज रोज कहते 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 गुरु जी थक गए, ये करो ये करो, किंतु काल बहाना इधर उधर कोई कर रहा हो तो क्या कुछ समझना चाहिए। उसमें से निकल जाने पर रह जाता है केवल पर वो भक्त, ऊपर से भक्तों का सेवक, क्योंकि उसके उसी काम में ही जिसको वो करते हैं उसका कल्याण विशेष नहीं, किंतु बेचारा समझ नहीं पाता। ऐसे भगवान को और गुरु को वैष्णव को किसी की सेवा की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि उनको कोई भी सेवा की आवश्यकता नहीं, वो तो जगत की सेवा के लिए जगत में पधारे हैं, जगत के कल्याण के लिए पधारे। इसीलिए योग माया जो नित्य मुक्त सिद्ध पार्षद होते हैं, भक्त होते हैं, भगवान होते हैं, उनके पीछे पीछे डोलती रहती है। कब कोई ऐसा सुयोग अवसर मिले मैं उनकी वांछा को जानकर, उनके मनोविलास वस्तु को जानकर, सिर्फ शीघ्र ही उनके कहने के पहले ही उसको कर दो, उनको मालूम न पड़े। यदि मालूम पड़ गया तो फिर किसने किया मालूम पड़े। लोकनाथ गोस्वामी भजन कर रहे हैं किंतु टट्टी कौन साफ कर जाता है, कौन साफ कर जाता है, ये जाकर के वो कहता है जो साफ कर रहा है वो कहता है गुरु जी मैंने आपकी टट्टी साफ कर दी, आप बहुत अच्छी तरह से साफ कर दी, कोई नीचे आप जाकर के देख तो लीजिए, कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, फल तो निकल जाएगा इसे, जो फल चाहते थे वो नहीं। इसलिए कभी भी नरोत्तम ठाकुर जी ने नरोत्तम ठाकुर कभी तो गुरु जी मैंने आपकी टट्टी साफ की है, गुरु जी आपने ऐसा किया ऐसा, तो वो चाहते नहीं है। इसी तरह से भगवान भी योग माया की सेवा लेना नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने इच्छा की और वो पहले से प्रस्तुत है ये प्रभु की अभिलाषा करने के लिए, यही पूर्ण सेवक का कर्तव्य होना चाहिए। समझ बुझ करके अंत अभिलाषा को समझ करके सब काम यदि हम लोग कर सकते तब तो हम लोगों का भजन, भजन मैंने क्या है, भजन मैंने क्या है, भजन में ये मत समझ लो जिसे भगवान को पाप पा लेंगे हम लोग भजन से, ऐसा मत समझो। साधन के अधीन नहीं है भगवान, दुर्लभ है ना, बहुत साधन करने पर भी वो भक्ति भाव भक्ति नहीं आएगी, इसलिए साधन के सापेक्ष नहीं, ये दिया जला दिया, आरती कर दिया, उसी के नीचे ये कर दिया या ऐसा कर दिया, त्याग कर दिया और कतिया भगवान मिल जाएगा, ऐसा मत कर। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान को करुणा का उद्रेक हो जाए, इसको देखकर उनकी नजर पड़ जाएगी और उनका चित्त द्रवित हो जाए, यदि द्रवित हुआ तो वो फिर उस पर आ जाएगा। इसलिए जो माया चुपचाप खड़ी है पीछे से, आप सोचा कि प्रभु की ये इच्छा है, कृष्ण को जानने नहीं दिया, और साथ ही साथ ऐसा हुआ कमर जैसी की तैसी, और साथ ही साथ में रस्सी आ रही है, रस्सी लाओ तो वो जितनी गोपियां थी इसलिए नहीं ला रही है कि ये बांध देगी अथवा नहीं बांध सकती, इसलिए नहीं, उनको कुछ कौतूहल हुआ। भाई यशोदा के घर की जितनी ही रस्सियां थी ला दी गई, और दो दो अंगुल कम पड़ जाती है। अब यशोदा जी ने कहा अपने घर की रस्सी लाओ, इसलिए नहीं ये सोच रही है कि वो लाएंगी और बन जाए, वो देख लीजिए ये क्या हो रहा है मामला पे। कमर उतनी पतली, जब ये थोड़ी सी कमर बन जाए तो वो
कर्धनी
कर्धनी पाते हैं क्या
घुंघरू
यहाँ पर लगा हुआ है, टूट जाएगा, किंतु टूट नहीं गई जैसे कि तैसी ही, दस अंगुली बस इतनी छोटी सी कमर बन नहीं रही। रस्सी में जो गांठे लग रही हैं, गांठे पचासों सातों हजारों लाखों गांठे पड़ गई, रस्सी लंबी की लंबी भी हो रही है, किंतु बस लपेटा देती है, एक बार भी लपेटा नहीं होता तो अंगुल कम पड़ जाती है। ये सुना तो ठाकुर जी ने बतलाया कि ये पढ़ने का कारण एक तो लीला अघटन घटन प्रदेशी जोग माया की, और दूसरी रही साधकों का भजन जन्य क्लेश, साधन भजन का क्लेश, और दूसरा क्लेश को देख करके कृष्ण की दया का उद्रेक होना। हम लोग जैसा भी परिश्रम कर रहे हैं भजन के लिए, जितना परिश्रम कर रहे हैं ना, जैसे हम लोगों को पसीना है नाम करते समय आ जाता है, कोई सेवा करते हुए परिश्रम से पसीना से तरबर हो जाते हैं, भगवान के सेवा के लिए हम लोग जैसे व्यति व्यस्त रहते हैं, तो इसको देख करते मालूम होता है ये कोटि वर्ष क्या है, अनंत काल तक हम ऐसे ही कर्म से भजन करता रहे तभी कुछ होगा कि नहीं, नहीं? तो कभी इच्छा होगी जो काशी में चले जाए कौन घाट पर प्रसाद स्वामी राम राम करते हुए छलांग लगा देना, जी करके क्या होगा, भगवान ही नहीं मिले तो फिर क्या होगा। किंतु थोड़ी सी गलती वहां पर हम कर जाते हैं, थोड़ी सी गलती हमारी ये है कि भक्तों को भगवान का स्वरूप और धाम को भगवान का स्वरूप ना जान करके मरने के लिए जाते हैं। यदि जानते जो भक्त भी भगवान का ही स्वरूप है वैसा, और धाम भी है और नाम भी है, तो हम करते किंतु करते नहीं, जान देने से भगवान नहीं मिल जाए। तो भक्तों का परिश्रम होना चाहिए भजन। अब ये आप लोग और हम लोग विचार करें, जो हम लोग जो भजन कर रहे हैं, ये भजन में हम लोगों को कितना परिश्रम हो रहा है, जैसे कि भगवान को दया आ जाए। बिल्लो मंगल जी चले हैं चिंतामणि से छोड़ करके, अपनी प्रिय वस्तु को छोड़ करके, हर बार चिंतामणि को छोड़ करके चले, और कुएं के पास आकर के अपने दोनों आंखों को भी जब उन्होंने छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ा, भगवान को छोड़ करके इधर उधर में फंस जाती है आंखें, जब खोल लिया और हाथ कृष्ण करते हुए जब चले, देखा तो भगवान को दया नहीं आएगी, उनको आ जाएगी। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भजन कर रहे हैं, दिन रात उनका भजन का परिश्रम देकर के भगवान को दया आ जाती। ऐसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं तो विचार कीजिए, जैसे कि भगवान को दया आएगी कि नहीं, अभी जो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहे हैं उस स्तर पर हमको जाना पड़ेगा। भगवान ऐसे ही द्रवित नहीं हो जाएंगे, ऐसा कठोर प्रश्न चाहिए। यशोदा जी बांधते बांधते कल ऐसा और रसी लाओ, कौतूहल देखना आरंभ किया। अच्छा दौड़ करके देखे तो इसका अंतम अंत में क्या होता है, उनको ये देखना है गोपियों। यशोदा को प्रसन्न करने के लिए हमारी सखी प्रिय सखी है, आदेश दे रही है, पालन करने का उसमें कोई प्रश्न नहीं, वो देख रही है। अच्छा रसी तो ले आए, देखे कि अब क्या होता, इसलिए गई अपने घरों की लस्सी ले यशोदा के सामने
पत्थर पत्थर
लोग बांधो को लेकर। कृष्ण सुबह सुबह करके अभी भी रो रहे हैं, उनका एक हाथ यशोदा जी ने अपने दाहिना हाथ बाएं हाथ में पकड़ रखा और रोष से देख रही हैं, और गोपियां लेकर के देख रही हैं और हंसी भी कर रही हैं, ताली भी बजा रही हैं, कुछ मस्खरा भी कर रही हैं, पठोली पठोली बोल रहा जैसे पठोली भी बोल रही यशोदा जी। बांध सकिए ब्रह्मा जी ने इसके ललाट में बंधन नहीं लिखा, आप खुद उसको बांध देगी। अच्छा बांधो कहे यशोदा जी प्रतिज्ञा करती हूं, आखिर निकला है तो मेरे पेट से, बुद्धि भी हमारे पेट से ही इसकी निकली, आज तो बांध करके तुम लाओ रस्सी और उसको गांठ दे रही है और बांध रही है। प्रत्येक बात देखती हैं अब तो रस्सी बढ़ गई होगी और प्रत्येक बात को आएगी वो कम पड़ती है। अभी यशोदा का परिश्रम भी पूरा नहीं, कृष्ण के द्रवित होने लायक अभी नहीं हुआ, जब पसीना बांध करके उसकी धारा चलने लगती है, देखा जो आप बांध नहीं सकती और लज्जा के बारे में कैसे मुख दिखाऊंगी, नारायण से भी प्रार्थना करने लगी और बहुत ही भीतर में क्लेश उनको हुआ। तब भगवान ने देखा कृपयाशीत विश्वा परिश्रम कृष्ण कृपयाशीत
सवर्ण,
उसी प्रकार से हम लोगों के परिश्रम को कृष्ण देखेंगे, आराम से खा रहा है ना? और आराम के साथ में पलंग पर सो रहा है, आराम के साथ में टहल रहा है, आराम के साथ में प्रत्येक क्रियाएं कर रही हैं, कोई चिंता नहीं है। अंगुली में एक कांटा गड़ गया उसके लिए जितनी चिंता नहीं है, माया हमारे रगरग में घुसी हुई है इसके लिए तनिक भी चिंता नहीं, उसका कोई क्लेश नहीं है, बड़े आराम के साथ में सब काम। तो भगवान मिल जाएंगे ऐसे नहीं मिलेंगे, उनको देखना होगा जैसे कृष्ण का चित्त कैसे द्रवित होता है। जबकि ये सब देखा कृष्ण ने मैया को, जब उनका चित्त द्रवित हो गया परिश्रम होकर। रूप सनातन जी को देखो, रघुनाथ दास जी को देखो, घर में सारा वैभव भरा पड़ा है, अस्तराशी स्त्री है, मैया का लाड संपूर्ण रूप से उनके ऊपर, दो भाइयों में एक ही पुत्र, राज्य के उत्तराधिकारी हैं, सब पर लात मार कर चले गए। वहां पर उनको भोजन हमारे जैसा मिल सकता था कि नहीं, देहरादून राइस, अरहर की बड़ी बड़ी दालें, घी में छौंकी हुई, उसे मोती जैसे बिंदु चमक रहे हैं और 15 तरह की तरकारियां और कैसा राबड़ी अथवा परमंड में रोज मिल रहा है, नहीं मिल सकता। यदि थोड़ा सा मिर्च और तेल कम हो गया तो उस दिन आफत आ जाए, और वो बेचारे सड़े गले खातों में से निकालकर कईयों के पीछे सड़े गए, नमक बो करके नमक मिला करके खाते। राजा के लड़े दिन रात भजन करते हैं ना, 1008 वैष्णवों के लिए प्रतिदिन सप्तान दंडक प्रणाम करते हैं, खाने में केवल इतना सामर्थ था, बड़े बड़े राजा महाराज उनको देने के लिए मथुरा के बड़े बड़े सेठ लोग धनी मानी उनके लिए प्रस्तुत है, तो कुछ नहीं। सोते हैं किस पर? जमीन पर। आकाश में क्या? ऊपर कोई बीमार ऊपर केवल ऐसा ही, कोई घर नहीं, दरवाजा कोई कुटिया नहीं, सनातन गोस्वामी ने कृपा करके उनके लिए एक छाव बना दी, मरैया छुट्टी से बना दी। दिन रात रोते रहते ऐसा था, हमारे और को छोड़ दो, दो पुरुष आगे चले चलो, पहले पुरुष अब तो परम गुरु जी तुम लोगों के हो गए हमारे गुरु, हमारे गुरु जी तुम लोगों के परम पुरुष सब लोग, वही हम लोग तीन चार आदमी बैठे हैं सामने, चार आदमी है, पांच तीन है, चार ही आदमी हम लोग हैं, अच्छा पांच है, बाकी सबके परम गुरु और उनके परम गुरु गौरकिशोरदास नारायण महाराज जी का लौकिक वैराग्य देखो, वो देखा जा सकता है, इसलिए कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर और प्रभु जी का वैराग्य हम लोगों के दृष्टि से उज्जवल है, इनसे भी बहुत बड़ा है। गौरकिशोरदास तात्पर्य तो नहीं, किंतु हां जब विचार करके देखते हैं कि प्रभुपाद जी का कैसा वैराग्य था, बहुत महान, बहुत वैराग्य को भी लाभ से मार दिया प्रभुपाद जी ने, किसके लिए? जीवों के कल्याण के लिए। बहुत कुशलता जी का वैराग्य, जमुना की मट्टी खाली बैगन मिल गया उसी को लेकर के गंगा जी में खड़े होकर के उसको खोया और पीने वाले स्थान को हटा दिया, भोग देकर क्या वहीं पर खा दिया, जो और कोई कुछ जो कुछ चावल आटा जो आटा मिल गया उसे खोल दिया, नमक दिया चाहे नहीं नमक दिया, ऐसे तीव्र रूप में दिन रात भजन करते थे उठ बैठ, तब तो भगवान उनको मिले थे ऐसे ही मिल गए, इसलिए भजन की वैसे ही देवता और कठोरता के हैं, इसमें त्यागी और गृही का कोई भी अंतर नहीं है, जय भजे से ही इसमें नहीं है ये महिला है ये गृहस्थ है और ये त्यागी है, आज का त्यागी आकर के मठ में वो समझता है जिसे हम अब सबसे बड़े हो, ये गृही लोग तो गृहस्थ है, ऐसा तुम लोग मत विचार करना, तुम लोग विचार करना गृही और त्यागी का नहीं भजन का विचार करना, सिद्धांत में प्रवीण और भजन परायण तब तो भजन होगा, अन्यथा भजन नहीं होगा, क्योंकि त्यागी का दोनों दोनों को सम्मान देंगे, इसलिए भजन यदि करना है तो आए। यशोदा जी ने प्रण कर लिया कि मैं से आज कल परसों परसों वर्षों सारा जीवन बांधूंगी, खाऊंगी नहीं, विश्राम नहीं करूंगी, बांध करके ही तब जो कुछ होगा एकदम कठिन है। जब कृष्ण ने ऐसी उनकी भावना देखी तब खनाक एक मिनट भी नहीं लगा, कृपया शीत बन गया, अभी तक कृष्ण रो रहे हैं, आंसू नहीं, गंगा जमुना की धारा चल रही है, भी इनसे डर करता है वो आज तक कुछ इनके डर के मारे ही ऐसी दशा हुई, बांध दिया और बांध करके ऊपर में बांध दिया, शासन करती गई, बच्चे देखना खोल न ले, और यदि कुछ हो तो हमको खबर देना, पतला दे। और रोष में कल चली गई, फिर ऊपर में तो रोष और भीतर में डर रही है यदि कुछ हो गया तो। किंतु रोष उस समय नवलीला का भाव के द्वारा वो आच्छादित है, भाव चली गई किंतु गई वहां पर दधि मंथन के लिए बैठी, किंतु अब दधि मंथन हो सकता है उसी स्थिति, दधि मंथन बस हाथ में दधि का मंथन रखती बस रह गया। सोचने लगे मैंने ये काम ठीक तो नहीं, मैंने ब्रज की गोपियों की बात नहीं मानी, इतने परिश्रम के बाद में मनोतियों के बाद में भगवत कृपा से एक इतना सुंदर सुकुमार अच्छा लड़का मुझे पैदा किया और आज मैंने उसको इस तरह से मैंने बस यही सोच में भी हुई हूं। और इधर लड़कों के साथ में अब कृष्ण को ताना मारने लगे, हाथ से ताली बजाने लगे, रिझाने लगे। अब तक बलदेव भी नहीं आए थे, रोनी भी नहीं आई थी, मैया मैया चिल्ला रहे थे, भैया दाऊ जी कर रहे थे, अब दाऊ जी आए। देखा कृष्ण को इस स्थिति में, आंसू तो सूख गए हैं किंतु कावा वो जैसे नदी सूख गई जमुना, किंतु
चिन्ह पड़ा हुआ,
चिन्ह तो पड़ा है ना, गंगा जमुना की धाराएं दोनों तरफ से बह रही हैं, अब सुख नहीं है किंतु काली काली धारियां तो पड़ी हुई है। एक आरोप किसने बांधा, जितने बच्चे से सब शांत हो गए, किसने बांधा, बड़े बिगड़ गए। तभी जुबान से एक बच्चे ने कहा मैया, मैया का नाम सुनते ही बस घर कुछ विचार करने लगे, और यदि दूसरा कोई बांधा होता आज तो वो देख लेते, किंतु मैया ने बांधा है इसलिए वो विवश हो गए। क्यों बांधा, बच्चों ने बतलाया, अच्छा खुलने के लिए लग गए, नहीं खोल सके। दूसरे बच्चे सब आए, खोलने लग गए, नहीं खोल सके, गांठ इतनी कड़ी थी कोई खोल ही ना पाए। लोगों ने कहा कि तू खोल ले, पीछे पहुंच जाए, जिनकी भुजाएं विश्व ब्रह्मांड में चित जगत में वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन तक यहीं से पहुंच जाती है, किंतु आज यहां तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि मैया ने बांधा है। वात्सल्य का बंधन कोई भी दास्य सख नहीं खोल सकता, इसलिए नहीं खोल सके। कृष्ण स्वयं नहीं, कृष्ण तो किसी का बंधन भी नहीं खोल सकते, ये नहीं तो खोल सकते, बहुत चेष्टा है। कृष्ण ने कहा कि एक बात करो, पीछे से उखल को
खेलो
खेलो, अगले चले बाहर में वहीं पर खेल खेले। क्यों, उस समय जोग माया की इच्छा ने प्रेरणा दी, हमको अपने कर्मों का फल याद नहीं, हमने कब क्या किया है और उसका फल मिल रहा है। कोई लड़का मर गया हमारा, हमें खूब गंभीर रूप में चोट आ गई, कोई भी बात नहीं, किसी ने अपमान कर दिया, हम ये जानते हैं कि क्यों हुआ, हम यही देखते हैं कि उसने मेरा अपमान किया और वो हमारा शत्रु, उसने मुझे चाटा मारा, मैं उसे देख लूंगा, यदि बराबर का हूं तो दो चार साथियों को ले लूंगा, कमजोर है तो उसी समय में मारूंगा, और यदि अधिक सबल हुआ कि जैसे देखेंगे षड्यंत्र करके उसे मारे, यही हमारा प्रधान सूत्र, यही हम ऊपर से विचार भागवत में इसका विचार किया गया। जिस समय सार और गाय एक साथ में आ रहे थे, परीक्षित महाराज जी जा रहे थे दिग्विजय करने के लिए, आश्रम में ठहर गए थे, उसी समय पासी में देखा एक बड़ी विचित्र घटना। तीन पैर का एक बैल है, एक पैर का, तीन पैर में से तीन पैर कटे हुए, पैर नहीं है, और एक पैर पर चल रहा है, उसमें भी चोट आ रही है, वो मार रहा है एक सूत्र काला, उस पैर को भी लंगड़ा करने की चेष्टा कर रहा है। कोई कोई व्याख्या करते हैं चारों पैर थे कि तू चतुर अंश में तीन अंश कट गए और केवल एक अंश रह गया था, कहते हैं कोई क्या क्या व्याख्या नहीं, पैर तो चारों थे, ये तो चल करके कैसे आया, वहां पर तो स्वयं ही कहेंगे रूपक है, ये क्या चीज है रूपक, और वो बैल और कोई नहीं स्वयं
धर्म,
वो धर्म है, गल्ला है और कोई नहीं वो तो
पृथ्वी
देवी है, धर्म एक पैर से भी चल सकता है, चार पैर से भी चल सकता है, ग्यारह पैर से भी चल सकता है, चल करके आने में उसको कोई कठिनाई नहीं। इन्होंने अपने योग से देखा, योग बल से किन्होंने साधारण आदमी उसको नहीं देख सकता था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के न्यासाई अपने योग बल से इन्होंने देखा, अरे ये तो धर्म की साक्षात मूर्ति है। अच्छा ये जो धर्म है, धर्म तो देवता है, उनका कली क्या बिगाड़ सकता है, कुछ बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता, भगवान का धर्म क्या कलियुग क्या करेगा, अरे साधारण भक्तों का भी धर्म कुछ कभी कुछ कर सकता है, साधारण जो नाम परायण भक्त हैं उनको कभी क्या करेगा, कुछ कर सकता है, हाँ हम साधक लोगों को भी वो कर सकता है, विघ्न बाधा का कर सकता है, किंतु लिखा गया है नते माथ और ताव का क्वचित भ्रष्यंत मार्गा कोई भक्त सौभिगार विचरण की निर्भया विनायकानी कपो प्रभु, यदि एकांतिक शब्द रूप में दृढ़ प्रत्यय भजन करने वाला है तो विघ्न को डालने वाले जितने भी देवता या अशुभ है उनके चरणों पर सिर रख पर पैर रख करके और भक्त उदान दिया धुए जी के, उदान दिया प्रधान महाराज जी के, उदान दिया हरिदास ठाकुर के लिए, उदान हजारों, विघ्न कुछ भी नहीं कर सकते, 22,000 में मार करके अचेतन कर दिया, गंगा में डाल दिया और फिर वो थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, निकल करके चले आए सदे, तो मारने के पहले यदि वो ऐसा कुछ वैभव दिखला देते तो क्या कर लेते ये लोग, वो तो उनकी लीला मात्र थी जो 22,000 में मारा गया और उनको चोट लगी, आ रहा है समझ में, कुछ कुछ नहीं नहीं कर सकते थे, पहले ही ऐसे कहते थे है ठर जा, जैसे नाथ जी ने कहा तो हरदास ठाकुर को ऐसी क्षमता थी कि नहीं, ठर जा बस कुछ नहीं कर सकते, हरदास ठाकुर ने जान बूझ करके ऐसा नहीं, नहीं तो वो लीला संपन्न सहिष्णुता की तिथि वो नहीं थी, भगवान पर विश्वास नहीं रह जाता, इसलिए मार करके फेंक दिया और निकल करके चले आए, तो विघ्नों के ऊपर में भक्त लोग पैर रख करके चलते, और भक्त जी के भजन कुटी पर आस पास में कोई विघ्न आता था, कोई विघ्न नहीं आता था, जहां जहां पर हमने अनुभव किया है सिद्ध महात्माओं की तो बात छोड़, जो भजन पर आए दृढ़ प्रतिज्ञ भजन करने वाले हैं बड़ी बड़ी विपत्तियों की संभावना रहने पर भी वैसे ही चली जाती हैं जैसे मेघ रहते हुए भी हवा में उड़ करके चला जाता, कुछ भी नहीं होता। और भक्त नहीं है तो क्या होगा, बर्फ पड़ता है ओला
तो सब विपत्तियां आ
जाती, सब विपत्तियां चारों तरफ से घेर लेती। पुरुषार्थ उस समय कोई काम नहीं करता, इसलिए भक्तों में वो क्षमता है विनायकानी विघ्न करने वाले जितने भी हैं वो सब दूर हो जाते हैं, विघ्न कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं किस लिए ये बतला रहा था,
धर्म के तीन टांग है एक टांग,
हाँ तो वहां पर धर्म का धर्म कौन है, वो द्वादश महाजन कौन,
शंभु नारद
स्वयंभू नारद शंभु कुमार कमलो मनु
प्रहलाद और जनक विश्व बड़ी भैया सखी वयम,
तो इसमें
वयम जम
जम महाराज शंकर वो धर्म तत्व को जानने वाले भगवान के प्रथम श्रेणी के भक्त हैं। प्रथम श्रेणी मैंने वो नहीं, साधारण में प्रथम श्रेणी। ये कलिम का काम क्या करेगा, किंतु हां लौकिक रूप में ऐसा ही साधारण लोग चार वो टांग कौन है, तप शौच दया और केवल सत्य के बल पर चल रहा है। तीन पैर उसके नष्ट हो चुके हैं इस तरह से, ऐसा नहीं कि चारों काट कर तू टांग सो, एक पैर पर चलता हुआ उसको देख रहे हैं और कभी उस पैर को भी तोड़ने में लगा हुआ है और उसी समय में फनूस उठाया तुम्हें समाप्त कर देंगे, किंतु वो शरणागत हो गया तो दया आ गई तो छोड़ दिया और कर्म के चारों चरणों को फिर वो निकल आए और चारों चरण ठीक हो गए, गैया भी प्रसन्न हो गई। जो जो कारण थे वो सबको अपने राज्य से निकाल सके, चारों चरणों पर उस कर्म को अपने राज्यकाल तक उसको ठीक रख कर, तो ये हाँ तो किस विषय में भक्तों के ऊपर में कोई क्लेश अथवा ये सब नहीं आता। दुख का कारण क्या है, कोई कोई कहते हैं कि दैव, वो धर्म का कारण दैव इसका कारण, कोई कोई कारण है इसका कारण काल है, कोई कोई कहते हैं कि स्वभाव अथवा प्रकृति है, कोई कोई कहते हैं कि अपना कर्म ही उद्भुत होकर दुख क्लेश अथवा सुख दे रहा है, कोई कोई कहते हैं भगवान ही इसके कारण। इतने जो मैंने कारण बतलाए इसमें आप गंभीर विद्वान विचारक राजा हैं, आप विचार कर लीजिए कौन सा ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि ये हमें मार रहा है, मैं नहीं कहूंगा ये स्वभाव ही हमारे लिए दुख का कारण, मैं ये नहीं कहूंगा कि काल ही इसका कारण, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इसका कारण, मैं ये नहीं कहूंगा हमारा पूर्व कर्म ही इसका कारण। अच्छा ये धर्म के धर्म को जो ये तीन टांग दे चुका है, वास्तविक में विचार किया जाए तो इसका कारण क्या हो सकता है, काल न प्रकृति न धर्म का स्व उपार्जित पूर्व जन्म का कर्म फल न अविद्या, क्या है इसका कारण, जब विचार करके देखते हैं तत्ता तत्ते रूपम पाम सुसमित मानु भुंजान देवात्मा कृतम विपाकम हृदबा बौद्धि विधन नमस्ते निवेद जन्म, देखते हैं कि इसका मूल कारण प्रभु। तो प्रभु ने ऐसा कैसे किया कि मूल कारण प्रभु है, किसी को सुख किसी को दुख और हमको दुख देने का लिए किया है, तो ये प्रभु पर सब लगा देंगे, अरे ऐसा अनिति मत करो। तुमको प्रभु ने एक बड़ी भारी सुंदर मूल्यवान वस्तु दी है उसका सदुपयोग करने से तुम सुखी रहेगा, दुरुपयोग करने से किंतु वस्तु उन्होंने दी वो क्या किया है स्वतंत्रता ही दिया भगवान जी को। यदि यह स्वतंत्रता भगवान ने न दी होती तो जी एक जड़ पदार्थ की भांति इनका और पत्थर ऐसा बना था, लकड़ी का खंड एक अनुपम वस्तु अनमोल वस्तु दी है का दिया इसका सदुपयोग करेगा, इसका सदुपयोग करने के लिए स्वतंत्रता तुमको दे रहे हैं अच्छा या बुरा समझ करके तुम इसको करो। यदि इसका सदुपयोग किया तब तो ठीक है, दुरुपयोग किया तो दंड देंगे, दंड में दिया थी तलवार दे दी बंदूक दे दी दूसरों को मारेगा तो दंड दूंगा, तो डकैत बदमाश आए उन्हें मारना, हमने यदि कुछ बुरा किया तो उसका दंड, इसलिए हम भी अपने दोषी हैं। भगवान उसका नियंता है, मूल में भगवान है नियंता मूल रूप, और उसके निमित्त कारण बन गए और उसमें अविद्या जुड़ गई और अविद्या के कारण कर्म फल आ गया, बाकी सब कुछ उसमें जुट गया, कर्म जाकर के काम कर गया। वो जो एक एक कारण जो दिखला रहे थे वो आंशिक और न के बराबर, किंतु इस प्रकार से सबका सामंजस्य जब कर लिया जाएगा तो क्रोध किस पर करेगा, दोष किसको देगा, अपने कष्टों का दोष किस पर किसके सिर के ऊपर में थोपेगा, बस अपने ऊपर में थोपेगा और किसी के ऊपर नहीं, प्रभु की कृपा मांग करके सोचेगा। इस तरह से इसका सामंजस्य कर लेना चाहिए। इसलिए भक्ति में जितने भी क्लेश हैं हमारे सुखों का कारण है, यशोदा जी को ये कष्ट नहीं हुआ होता, इतनी विपत्ति में नहीं फंसती तो भगवान की करुणा नहीं होती और योग माया सेवा का सुयोग नहीं पाती और ये लीला संघटित नहीं होती और इस लीला के द्वारा कोटि कोटि लोगों का कोटि कोटि कालों का कल्याण होता रह जाएगा इसी लीला के द्वारा, ये लीला कृपा करेगी, इसलिए ये कहते हैं कि ये लीला हमको
रक्षा करे,
हमारी रक्षा करे, सब प्रकार की ये रक्षा करे। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, दूसरी बात सरकार वहां पर गए योग माया ने देखा कि प्रभु कुछ अपनी लीला में आवेश होकर के बूंद रहे हैं, एक ऋषि को उन्होंने पर किया, ऋषि ने दो लोगों को कुछ बर दिए भी बर दिए हैं बर दिए हैं। योग माया जानती है कृष्ण के भाव को, ये बर किसको कहते हैं, अभिसंपात किसको कहते हैं, हम लोग की धारणा ये नहीं है बर किसको कहते हैं और अभिसंपात किसी को मार देना ही अभिसंपात नहीं, तुम ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओ ये बर है कि अभिसंपात है, असल दृष्टि में ये बर हम इसको अभिसंपात नागरी कहीं जा रहे थे देखा उलंग दो राजकुमार महाराज कुबेर के पुत्र धन धान्य से पूर्ण धनी धनी राजा का लड़का कैसा होता है, सुकुमार अंग गच्छीजे बड़े सुकुमार हो बहु उसी में उसका लालन पालन होता है, सब प्रकार से रिद्धि सिद्ध होती है, दुख नाम की क्या चीज है वो नहीं जानता, कुबेर का लड़का भला कैसे जाने, रूप में सौंदर्य में विद्वता में उच्च जाति में विद्या में सब में वो पारंगत, दुख नाम कुछ अभी जानता नहीं, केवल
भोग विलासों में फंसा हुआ था, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो अब अंतिम बिंदु तक भोग के वो उसने भोग लिया, स्त्रियों के साथ में, अस्त्रों के साथ में, सरोवर में जहां पर सुंदर प्रकृति का सुषमा वहां पर चारों तरफ में खेल रही है, और वसी में पहाड़ों का झरना का पानी आ रहा है, सुपलमंद सिगंध वायु बह रही उनके साथ में खेल रही स्त्रियां नंगी, ये भी नंगे नारद ऋषि उचित ढंग से जा रही, स्त्रियां लज्जित होकर के उठ पड़ी, कपड़े पहन करके लज्जा से सिकुड़ती हुई उनको दूर से खड़ा, और ये दोनों नशे में चूर होकर के मग्न, एक तो मग विद्या का, उच्च कुल का, धन का, सौंदर्य का, और ऊपर से ये सूरापान का मग मतवाला कर दिया, इसलिए विवेक का कोई भी बात नहीं, नारद जी को गाली गलौज करने लगा, कहां से ये आ गया, गाली गलौज करने लगा, और लड़कियों पर भी किशोरियों पर भी कुछ बरस पड़ा, लज्जा की क्या बात है, उन लोगों को तो लज्जा नहीं होती, कुछ ऐसे अंडबंड बकने लगा, नारद जी को कुछ दया आ गई, अरे ये मेरे मित्र कुबेर का पुत्र, कुबेर तो भगवत भक्त है और कुबेर जी के गुरु हैं शंकर, शंकर के आस पास में रह करके ही तालाब में इसकी ये दुर्दशा, वृक्ष जैसा अचेतन हो रहा है, बस उसी समय का ये श्लोक है, ऐश्वर्य सुख श्री जी एक मान मदक मान नई बाई अकिन गोचरण, तात्पर्य क्या है, भगवान किसके लिए गोचर है, किसके लिए दर्शनीय है, कौन देख सकता है भगवान को,
अकिंचन भक्त,
जो अकिंचन किसको कहते हैं,
कृष्ण वही जैसा,
ये मेरी चादर है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा धन है, ये मेरा सब कुछ है, ये जिसको है ये मैं हूं, बड़ा बलवान, रूपवान, धनवान, बुद्धिमान, ये सब जिसको अभिमान है वो निष्किंचन है, निष्किंचन वह है जिसको कुछ नहीं है, वो निष्किंचन हो गया ना, कुछ भी अपना कहे जाने वाला नहीं है, नहीं वो भी निष्किंचन नहीं, जिसको कृष्ण ही एकमात्र किंचन धन है और कृष्ण के अतिरिक्त और उसका कोई भी धन नहीं है, उसको कहते हैं सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, ये सब क्या है, परम परम निष्किंचन,
परमा किंचन,
और दत्तात्रेय जी अकिंचन है, केवल अकिंचनों में भी अभी पूर्ण किंचन नहीं बने हैं दत्तात्रेय, क्यों भगवान कल्पना भी हाँ जगत ही है, किंतु उनकी बहिर दृष्टि से ऐसा मालूम नहीं, अकिंचन का पूर्ण नहीं है, भगवत भक्ति से युक्त संसारी किसी भी वक्त में स्त्री का नहीं होना, और रत्न और किंचन